काम का
और महाराज कहे एमएलए एमपी ये सारी पृथ्वी के राजा भी बन जाए वो भी कुछ नहीं, और इंद्र का राज बहुत श्रेष्ठ है, असंख्य गुणा सुख है। यहां सारी पृथ्वी के राजा को जो सुख होता है उससे संख गुणा सुख और इंद्र जी को होता है। तो उसको भी कबीर साहब गरीबदास जी ने कहे हमने तो वो काग की बीट दिख है, इतनी घटिया है ये व्यवस्था इस तीन लोकताई की। तो इंद्र का राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नो, और सुखदेव पास हुरंबा आईजा का ध्यान लगया निर्वाणी नो, कि जैसे सुखदेव ने अपनी अपने इष्ट उसने तीन लोक की उपासना ब्रह्म की तक की विष्णु जी की उसमें भी इतना आरूढ़ हो जाओगे तो विष्णु लोक प्राप्त होगा जितना सुखदेव हुआ, कि उसके पास इंद्राणी आई थी और उसकी तरफ उन्हें ध्यान भी नहीं दिया अपने इष्ट के तरफ, इतना रूढ़ होकर लगा रहा। तो उस योगी को जो तीनों लोकों में सहसरी चला जा करता उसको केवल विष्णु लोक प्राप्त हुआ, और विष्णु स्वर्ग के अंदर वो बैठे हुए हैं ऋषि जी, फिर दोबारा पृथ्वी पर आना होगा। और फिर उसी प्रकार अपना सुखदेव ने अपनी पिछली आप बीती बताई थी एक बार कि मैंने असंख्यों जन्म भोग लिए थे इस लख 84 में। एक बार एक दिन एक सत्संग सुना जिसमें पार्वती और शंकर जी का सत्संग हुआ था, उस सत्संग को सुनकर मैं तोते के अंडे में और वो भी गला हुआ था, मेरी उम्र खत्म हो चुकी थी, फिर 84 के चक्कर में जाना था। उस सत्संग की वजह से उन प्रवचनों की वजह से मेरा वो अंडा प्रफुल्लित हुआ और दोबारा मैं तोते के रूप में उसमें बन गया जीव रूप में, और फिर मैं उस शरीर को छोड़ करके वेद की पत्नी के गर्भ में चला गया, जब हाई ली थी वेद व्यास की पत्नी ने और उसकी गर्भ में चला गया और फिर वेद व्यास का मैं पुत्र कहा। लेकिन उस मंत्र के उस नाम के सुन लेने से मेरे शरीर में अमरत्व प्राप्त हुआ। यहां तीन लोक का अमरत्व है कि 9 तत्व का एक शरीर और से इस 5 तत्व के अंदर जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो अमर हो जाता है, पर उसकी भी ये चक्कर नहीं खत्म होता। जैसे गीद ब्याद ये वो है ना बड़े संत, वो पिछले उनकी कमाई के अनुसार पक्षी रूप में आगे, पर शक्ति भक्ति फिर भी रही उनमें। तो इस प्रकार जब ये दोबारा इनका सुखदेव रूप में जन्म हुआ तो इसने अपने पहले गुरु नहीं मनाओ था यो कि मन गुरु की कोई जरूरत नहीं, और अपने शरीर के साथ विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी ने भी कह दिया ऋषि जी यहां के करण आया, ने बोला जी मैं स्वर्ग में रहूंगा। अक नहीं भाई, स्वर्ग मत वो रहेगा जो नीचे गुरु से नाम लेकर आया है। महाराज जी मैं भी तो आज आ गया हूं, अक बेशक आ गया हूं वीरा, तेरा कोई लाभ नहीं मिल सकता। अब जैसे यहां से अधिकारी कोई नौकरी करने वाला कोई कर्मचारी चंडीगढ़ चला जा सकता उसके पास पैसे हैं तो, लेकिन वहां रह नहीं सकता, रहेगा तो अपने घर पर खर्च करो और उस सरकारी क्वार्टर में नहीं रहने दें उसने। अगर वो ट्रांसफर करवा के ले जावे, बदली तबादला करवा के ले जावे, स्थानांतरण करवा के विधि से ले जावे तो उसको सारी सुविधा भी मिले और भाई वहां रहने का भी स्थान मिले और वह तनख्वाह भी मिले। इसी प्रकार हम अपनी मर्जी से साधना करते हैं तो हम लाभ पूर्ण नहीं प्राप्त कर सकते। और फिर गुरु पर भेद बताया सतगुरु ने। अब हम फेल क्यों हो रहे हैं, हमारे जितने भी सत्संग कहो या आध्यात्मिक वाद कहो, कि हम कोई सी भी मर्यादा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। आंख मीच का नाम ले रहे का गुरु होना चाहिए बस, निरे गुरु तो काम ना चलता, वो गुरु भी ठिकाने का हो। आगे हम गुरु का भेद बताएंगे आपको, गुरु कैसा हो और गुरु कौन होता है, गुरु के प्राप्ति करवा सकता है। तो गौर उस पर सुखदेव जी ने अपनी आप बीती बताई कि एक बार मैं गधा हो गया, गधा की जो नहीं भोग रहा था, ज्यादा काम लिया मेरे मालिक ने, अंधा हो गया, अंधा हो जाने से मालिक ने भी छोड़ दिया, तो फिर मैं चलता चलता एक गहरे खड्डे में गिर जाता हूं। नाला सा था, रास्ता था आने जाने वालों का, गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर मैं पड़ा हुआ था। मैंने विचार किया कि कोई भक्त आत्मा आवेगा मैंने काट देगा इसमें निकाल देगा, लेकिन किसी ने निकाला नहीं। इक्का दुक्का आवे उस वो ये विचार करके चला जावे कि मेरे पता निकले नहीं, और मेरे ऊपर पांव और टेक कह पूड़ी बना दिया परली पार हो जावे। कहते हैं मैं 7 दिन भुगत कर वहां अपना शरीर त्याग गया अन्न पानी ना मिलने की वजह से। और फिर वो दिन मुझे याद आवश कि एक बबी जरा सी भूल कर दी तो ये लख 84 फिर खड़ी से त्यार। उस भय के मारे में 24 घंटे परमात्मा को याद रखता हूं, अपनी साधना में रहता हूं।
तो इस प्रकार सतगुरु कबीर साहब ने बताया कि जटकुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल। सुनो भाई, इस शंकर भगवान का एक जटा कुंडली धाम है। आज आपने देखा होगा ना, शंकर भगवान का चित्र दिखाएंगे जिसमें तो गंगा काट रखी है। ये आपने देख रहे हो कि इसमें शंकर भगवान के चित्र में गंगा जी बार आरिश है जटा मत। ये कबीर साहब मारा कहते हैं ये कति भूल बुलैया से न बेरा को नहीं चित्र बनाउनिया ने और शास्त्र विद्यों ने। ये चित्र देखा भगवान शंकर जी का और इसमें से जटा स्किन की जटा से गंगा निकलती हुई आपने दर्शन करे, ये गलत है। कबीर साहब ने बताया कि एक जटा कुंडली नाम का एक तीर्थ है ऊपर कैलाश पर्वत पर शिव के धाम में, शिव के लोक में। जिस प्रकार यहां भाखड़ा डैम बना हुआ ना, वहां आपने किसी ने देखा हो, हम देख आए थे, बहुत पर्वतों के बीच में इतना चारों तरफ से बहुत पानी उसमें भरा हुआ है। और कहते हैं अगर वो डैम टूट जावे तो सारे हिंदुस्तान पर 10-10 फुट पानी खड़ा हो जाए, इतना उसमें पानी जमा है। अब भाव ये से कहने का कि हमने इन शास्त्रों को सुना जरूर पर नहीं समझाई, हमें कह के रखा है। एक जटा कुंडली नाम का एक ऐसा वहां पर बहुत बड़ा सरोवर है और उसमें सतलोक से आकर गंगा पड़ी है। जब ये ऊपर से आई तो गंगा निरंजन लोक में आई सतलोक से और फिर निरंजन से आगे आई ब्रह्मा के लोक में। इसका इतना तेज भाव था कि उसने उसमें शंकर जी ने उस जटा कुंडली में रखा और 6 महीने में वो जटा कुंडली भर के पूरी हुई। वो फिर वो भरने के बाद ऊपर से पानी चला, वो नीचे आकर के कहते हैं पर्वत पर हिमालय की इधर पड़ा, जहां पर फिर पर्वतों के नीचे से आकर के वो गौमुख के रूप में निकली। अब यहां हम दिखाते हैं कि शंकर भगवान अपनी जटा में 6 महीने रोक ली। सिद्ध पुरुष हैं, वैसे भी रोक सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि अगस्त ऋषि ने चारों सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। एक महाराज के गरीबदास जी कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि बहुत उपजीवे। एक सिद्धियां है ये, पर आत्म कल्याण नहीं है। तो यहां महाराज कहते हैं जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल। सुनो भाई, ये जट कुंडल सबसे ऊंचे स्थान पर है, बहुत कठिन स्थान जगह पर है। कहते इससे भी ऊपर सतलोक हमारा है जहां बंदी छोड़ कबीर साहब चले जाते। जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल। सुनो भाई, जहां द्रुपर लाद भी ना पहुंचे और सुखदेव ने मार्ग ना पाई। जहां सतगुरु कबीर साहब का धाम है वो ये सुखदेव ऋषि भी नहीं जा सके, जो कि सह शरीर उड़ जाया करते थे। और हम किसी योगी ने नो देख लिया हो तो भाई बहुत गणा तपस्वी है और शरीर ने नो इतना ऊंचा ठा ले से, ये कोई खास बात मत समझना। अगर सार नाम है सतनाम है तो उसकी मुक्ति से ना, तो ये खिलौने केरा कितनी बार बना बना के बिगड़ चुके हैं। और ये जादूगरी काम नहीं दिंदी वहां पर, जब सही तत् का स्थान आवेगा जहां जन्म मरण और आत्म कल्याण का स्थान आवेगा, वहां ये काम नहीं देगी बचने के लिए। तो अब हम आपको बताते हैं कबीर साहब के बारे में कि नानक साहब ने भी कबीर साहब से उपदेश प्राप्त हुआ। ऐसी नई नई बात हमने भी सुनी जब ओपरी सी लागी, अकी अच्छी और पचौड़ सी बात कहें ऐसे एक साधारण सा मनुष्य कवि और भगत कबीर साहब को इतनी बुरी मानता दे रहे। अब हमने लाल की कीमत का ना बेरा हो तो हम उसको एक कमचा समझ सकते हैं, एक पत्थर समझ सकते हैं, और जोरी के पास ले जाएंगे तो उसकी करोड़ों कीमत देगा और 6 बजे नमस्कार करेगा कि लाल के तो दर्शन भी अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार जब हमने इसकी कीमत का पता चला बंदी छोड़ कबीर साहब की का और जानकारी हुई कि तो पूर्ण परमात्मा थे, तो आज हम इनको भगवान कहते हैं। एक बार श्री नानक जी तलवंडी जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर है, वहां कालू राम मेहता के घर में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही बड़े सिद्ध पुरुष थे क्योंकि पिछले जन्मों की भक्ति इनके साथ थी। कबीर साहब ने इनको बताया कि नानक साहब आप सतयुग के अंदर अम्बरीश राजा थे, अम्बरीश राजा के रूप में आपने इतनी भक्ति करी कि दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने आपके ऊपर एक शक्ति छोड़ दी, सिद्धि छोड़ दी चक्र सुदर्शन आपका सिर काटने के लिए, और वो सुदर्शन चक्कर आपके चरण छूकर अम्बरीश राजा के, और उल्टा इसको दुर्वासा जी को मारने के लिए उनके पीछे भाग लेता है। और वो दुर्वासा अपनी सिद्धि से उड़कर तीनों लोकों में प्रार्थना करता है ब्रह्मा जी से, मुझे मेरी जान बचाओ। ब्रह्मा जी ने बोले यहां से भाग जा, मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बहुत कसूती उग्र रूप धारण करके जो है चक्र सुदर्शन साथ आपके आ रहा है, मेरे बस का नहीं, जल्दी भाग यहां से। फिर शंकर ज्यान के पास गए, शंकर ज्यान अभी हाथ जोड़ लिए, बीरा विष्णु ज्यान दो जाओ। वो वहां से भाग कर वही दुर्वासा जी भगवान विष्णु जी के पास आते हैं, क्योंकि अम्बरीश विष्णु जी के उपासक थे। तो विष्णु जी भी और कृष्ण जी के गुरु थे दुर्वासा जी, जो त्रेता द्वापर युग में आए। तो विष्णु जी कहने लगे, ऋषि जी के गुस्ताखी कर दिया आपने, भाई के कारण होया, इस चक्कर ने आपके ऊपर क्यों चोट लगाई, क्यों आपके ऊपर अटैक किया। उसने सारी बता दी कि मैं ऐसे ऐसे अम्बरीश राजा के दरबार में गया था, और वो करते हैं सरगुण भक्ति, व्रत रखते हैं, और वैसे ही, और मैंने उनको निर्गुण उपदेश दिया था कि निर्गुण साधना करो, वो नहीं माने तो मैंने छोड़ में आके गुस्से में आकर के चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, इसकी नाड़ काटनताई। तो कभी विष्णु जी बोले, भाई देखो, ज्ञान चर्चा में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, बातचीत कर रहे हो, कोई मानता है उसका भला, ना माने उसका भला, और जबरदस्ती ज्ञान आप किसी पर नहीं थोप सकते, ये आप पाप के भागी हो गए, और आपने तो नाड़ काटनी चाहिए, वो भी एक भगत की। अकबर जाकर उसके पांव पकड़ ले, तब तेरी माफी से ना कति माफी। अब दुर्वासा जी भयभीत खा गया कि कदे रास्ते में मार दे मने, यू पांव पकड़ाने वाला महाराज मन बख्श दो, और आपसे नहीं बच सका तो अम्बरीश कैसे बचावेगा, कदे कहीं मुझे ये रास्ते में ना खत्म कर दे, कि नहीं कतई नहीं करेगा। उसके पांव पकड़ ले और वो ही बकस सके तन बक्सेगा। तो जी वहां से वापस चाल पड़ा। दुर्वासा जी अम्बरीश के दरबार में आ जाते हैं, राजा अम्बरीश के चरणा में सर टेक दे, का मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो ऋषिवर, मेरे से गलती होगी। अम्बरीश ने वो चक्र सुदर्शन पकड़ का हाथ में और उसके मस्तक कला दिया, किले तेरा वापिस, पर देखे ख्यास करिए, भक्ति के भाव तेरा आकर, कितना बड़ा सिद्ध पुरुष हो, कितना साधक हो, कभी भक्ति को भंग करके उभर नहीं सकता। तो ऐसे भी आप नानक जी को बता रहे हैं कबीर साहब कि ऐसे ऋषि भी रहे आप अम्बरीश रूप में, पर तेरी मुक्ति नहीं हुई बीरा, ये निरंजन तक की उपासनाएं हैं। आपका दूसरा जन्म त्रेता युग में हुआ, आप जनक विदेही हुए, जो कि सीता जी के पिताजी थे राजा जनक, और आपके अंदर इतनी शक्ति थी कि जाति समय जब यहां से आप गए, हां, और राजा जनक जो है सुखदेव ऋषि के गुरु हुए, जो सुखदेव ऋषि इतने योगी हुए कि तीनों लोकों में चले जाया करते उड़कर, उनके गुरु राजा जनक हुए, और राजा जनक जाति दफा जब स्वर्ग में जान लागे, रास्ते में एक नरक पड़ा था, उस नरक के अंदर जीव बहुत बुरी तरह तड़फ रहे थे, 12 करोड़ जीव उसमें भुगत रहे थे। तो राजा जनक ने पूछा अपने पार्षदों से, जो उनके साथ उनको लेकर आदर से विमान में लेकर जा रहे थे विष्णु लोक की तरफ, कहने लगे ये क्या आवाज आ रही है, इतनी मार्मिक हृदय विदारक चीख क्या की सब भाई। तो उन पार्षदों ने बताई कि यहां पर एक नरक है, उस नरक में जीव अपनी करनी भरनी भुगत रहे हैं, और वो चिल्ला रहे हैं कि ये कितने दिन भुगतेंगे, ना जाने कितने युगों तक इनके में इसमें भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि इनका कोई समाधान हो सकता है, अग जी कोई समाधान नहीं, धर्मराय बता सके। धर्मराय को बुलाया वहीं पर जनक जी ने, और धर्मराज आ जाता है, कहने लगा हां ऋषि जी कैसे याद किया कि ये जो जीव जो दुख पा रहे हैं नरक में, इनका कोई समाधान है। अग्नि जी ने अपनी करनी भोगनी पड़ेगी, अकबर मेरे तो नहीं देखा जानता, अगर ना मांग जाऊं जब तक इनका छुटकारा नहीं हो जाएगा। तो धर्मराय ने राज ने सोची कि अच्छा पंगा पाया इन्हें, जो बोला एक समाधान है, आपने अपने पुण्य देने पड़ेंगे और ये कुछ समय के लिए बाहर आ जाएंगे। जो बोला मैंने मंजूर है, तो अपने पुण्य राजा जनक ने उन नरक वाले जीवों को संकल्प किया तो वह जीव नरक से बाहर आकर के स्वर्ग में भेज दिए। अब विचार सुनिए, बहुत ध्यान पर सुनने की बात से, ये कथाएं नहीं है, इन कथाओं से हम महाराज ने सार निकाल कर दिया। फिर अब काल की के व्यवस्था है कि राजा जनक ने खूब भक्ति करी, पुण्य किया और रास्ते में छल कपट करवा दिया इसी काल निरंजन ने, और वो पुण्य उसका अक्षीण करवा दिया। राजा जनक बैठा स्वर्ग में जाके फिर नानक के रूप में प्रकट कर दिया तलवंडी पाकिस्तान में। तो ये बात कबीर साहब ने नानक साहब तो बताई, इब दिल तो कांप जैसे कि जब इतनी भक्ति करी वीरार तो भी उल्टे चक्कर काट रहा से, मुक्ति कहां हुई थारी। तो न बोला जी फिर के करा, पर मैं तो जो है एक निराकार ज्योति अंदर मुझे दर्शन देती है निरंकार, मैं उसका जाप करता हूं और वो मुझे पूर्ण रूप से दर्शन दे रही है। कबीर साहब ने बोले ध्यान लगाओ। नो बोले नानक साहब तेरे 60,000 जन्म हो लिए जब से तू सतलोक से आया, और हमसे बिछड़ा बेटा तेरे 60,000 जन्म हो लिए बच्चा, और तू सथाई नहीं हो, और तेरे जैसे महान भगत भी चक्कर काटते हैं तो और आम जीव कहां मुक्ति की बाट देखे, इंतजार करते हैं, कहां आशा रखते हैं मुक्ति की। नानक साहब का पसीने आए कि के समाधान महाराज कि मैं नाम दूं, सतनाम मेरे पास है और जब तेरी मुक्ति हो, काशी में रहता हूं जुलाया सुबाई, काशी के अंदर किसी ने पूछ लिया कभी तेरा दिल करे तो आ जाना, पर तू निरंकार की जो उपासना करता है अब ध्यान लगा वो ज्योत, और वेद भी आखिरी परमात्मा की प्राप्ति उस ज्योति के दर्शन बताते हैं, प्रकाश में तेजो में परमात्मा सहस्रार कमल दल में है। सहस्रार कमल दल का मतलब हजार कमलों वाला, हजार पंखड़ियों वाला वो स्थान जहां पर हजार ज्योतियां नारी नारी चमक रही हैं, उसको आखिरी धाम और निरंजन धाम चौथी मुक्ति वो योगी प्राप्त करते हैं जब सहस्रार कमल में पहुंच जाते हैं। सहस्रार कमल में ज्योत नजर आती है, उस ज्योत को देख कर ये भगत जन अपनी आत्मा को प्रसन्न तथा मुक्त समझ लेते हैं। कबीर साहब ने बोले ध्यान लगाओ, ध्यान लगा तो ऊपर पहुंचे, सारा कुछ दिखा कर निरंजन का लोक, विष्णु का लोक, शंकर जी का लोक, गणेश जी का लोक, सब लोग दिखाए और फिर अपने लोक में निरंजन का लोक दिखाया, उसके बाद इस अंड ब्रह्मंड को पार करके अपने लोक में ले गए सतलोक में। वहां जाकर के कबीर साहब आसन पर सतपुरुष अपने आसन पर बैठे हुए और कबीर साहब चंवर करते हैं। अब नानक साहब के अंदर विक्षेप आता है कि रब तो ए होना जड़ा नीचे थल्ले बैठा है, ये उत्ते जो खड़ा है कबीर, ये तो इसका कोई अनुचर होना, कोई सेवक होगा। इतनी बात मन में आई थी, कबीर साहब तो वहां बैठ जाते हैं सतपुरुष के आसन पर और सतपुरुष खड़े हो जाते हैं और कबीर साहब पर ऐसे चंवर करते हैं। फिर इतने में विचार कर ही रहा था कि ये क्या हुआ, इतनी देर में कबीर साहब के अंदर वो सतपुरुष समा जाते हैं और केवल कबीर साहब रह जाते हैं, और फिर वहां से उसकी सूरत को नानक साहब की जो आत्मा थी उसको नीचे शरीर में भेज दिया। भाई इतना देख कर नानक साहब के बहुत कसक हुई कि तूने तो पूर्ण परमात्मा रब को और अपनी अज्ञानता के कारण खो दिया, और जब इब का दर्शन हो जाए तो मैं उसको उनके चरण कमल पकड़ के और बहुत याचना करूंगा। फिर याद आता है कि वो खुद बता के गए कि मैं काशी में रहता हूं, तो नानक साहब इतने आत्म विभोर हो जाते हैं, इतना मद नशा चढ़ जाता है परमात्मा की उस सच्ची लगन का कि कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, कि वो गुरु जो मैंने ऊपर देखा अपनी सूरत द्वारा उस लोक में सतलोक की जो झलमल ज्योति देखी, तो ये दूसरे लोकों की जो रोशनी है वो उससे बहुत फीकी नजर आई। जैसे जीरो का बल्लभ भी ना रोशनी हो अंधेरे में वो बहुत काम कर देवे, 60 का जब वाट का बल्लभ चसेगा तो जीरे वाला चस जरूर रहा है पर उसके ज्योति का रोशनी का महत्व नहीं रहता। इसी प्रकार मरकरी बल्लभ के सामने 60 वाला भी कुछ काम नहीं करता पर जग जरूर रहा है, उससे ऊपर जब सूर्य निकल आता है तो सब बल्लभ काम नहीं करते और चांदना केवल सूर्य का ही प्रकाश उनके सामने बहुत ज्यादा होता। इसी प्रकार जब सतलोक रोशनी प्रकाश सब लोकों में है, अब ये ध्यानते सुनते जाइए, जो सातों दिन इस बात को सुनेंगे वो आखिरी दिन के निचोड़ को पूर्ण रूप से पकड़ पाओगा। प्रकाश हर इष्ट का है, हर देव का है। हम केवल प्रकाश को देख करके अपनी आत्मा की सफलता तथा कल्याण समझ लेते हैं, ये कबीर साहब ने बताया गलत है। अंधेरे में एक मच्छर या तीतली या जुगनू पतंग देख लेते हैं कि जीरो का बल्लब चस गया, उसके चारों तरफ मंडराते हैं। साठ का जब चस जाता है तो उस जीरो के छोड़ के साठ वाले पर चले जाते हैं, और जब और ज्यादा बड़ा तेज चस जाता है उसको भी छोड़कर वहां चले जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने जीरे वाले बल्लब को भी सत्य माना था, क्योंकि अंधेरे में वही काफी था। जब उनको बेरा पता चला कि एक और रोशनी है तो उसको त्याग कर वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार हमने अभी तक रोशनी सुनी जरूर है, शास्त्रों में भी सुनी है। महात्मा बुद्ध की आखिरी उपलब्धि ये है कि मैंने एक रोशनी देखी, उसके बाद उसने कोई ज्ञान नहीं कि कौन सी रोशनी देखी, उस रोशनी कहां तक की थी। ये कबीर साहब बतावे कि किस रोशनी का उपलब्धि उन्होंने हुई। तो बात यह है कि हमने शास्त्रों को सुना जरूर, महापुरुषों की वाणियां भी सुनी, उनकी उपलब्धियां भी देखी पढ़ी, परंतु जब बंदी छोड़कर मिलाई तो वह जीरो और साठ तथा इस प्रकार के बल्लभ यानी उनकी इस प्रकार वेराइटीज मिली, उनके न्यारे न्यारे ऐसे ऐसे उनमें अंतर था। तो वहां से वो इतना आत्मविभोर हो गया कि वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु श्री सतनाम श्री वाहे गुरु। अब वही गुरु मिला जो मेरे सामने नो कह के गया था कि मैं सतनाम दूं तो मेरा छुटकारा हो, ना तो मैंने सुने लिया, दो जन्म तो मेरे ऐसे हुए जो कि आम व्यक्ति के नहीं हो सकते, राजा अम्बरीश के रूप में और जनक विदेही के रूप में नानक जी का जन्म पूर्व जन्म था। अब वहां से नानक जी चल पड़ते हैं और काशी पहुंचते हैं, कबीर साहब से नाम लेते हैं। कबीर साहब से नाम लेने के बाद उनकी मुक्ति हुई। अब ये बात आप विचार करियो और आपको शास्त्र प्रमाणित देंगे, हम वैसे नहीं कहेंगे, और अपने आप दो चार बार सुन लेने से अंतःकरण में यह बात जमा हो जाएगी, क्योंकि हमने और ज्ञान भी तो शास्त्रों से ही अपने अंतःकरण में जमाया है, या किसी से कहने सुनने में ही उसको सत्य मानना होगा, कोई अपना ज्ञान तो आपके पास नहीं है। रामकृष्ण भगवान विष्णु को हमने परमात्मा की संज्ञा में उनकी लीलाएं सुनकर उनके करामात देखकर परमात्मा की संज्ञा मान ली, मैं लिया उनको। और इसी प्रकार जो है जब आप कबीर साहब की महिमा सुनोगे तो आप अपने आप फैसला अपने मन को आप पर दे देगा, आपका कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहते नानक साहब वहां पहुंचते हैं और नाम लिया, जब नानक साहब का छुटकारा। अब गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं के जाखी वेख कबीर की नानक कीती वाह, और वो सखा का गल पड़ीब कौन छुटावता। जाखी किसे कहते हैं? 26 जनवरी के ऊपर आप नारे नारे राज्यों की अपनी अपने उस राज्य में जो भी अति उत्तम व्यवस्था होती है बहुत सुंदर सुजित उसको सज्जित करके सुसज्जित करके दिखाया जाता है, और उन झांक उसको झांकी कहते हैं, झलक कहते हैं, और जो सबसे अच्छी झांकी होती है उसको पसंद करके इनाम दिया जाता है। इस प्रकार विष्णु लोक की झांकी भी नानक साहब को कबीर साहब ने दिखाई, शंकर लोक जी की भी, शंकर जी के लोक की भी झांकी दिखाई, और ब्रह्मा के लोक की झांकी दिखाई, गणेश जी के लोक की दिखाई, और सब लोग दिखा के माता और निरंजन ब्रह्म तक की दिखा करके अपने पूर्ण ब्रह्म की तरफ वो ले गए। तो वो जो झांकी देखी, वो पूर्ण ब्रह्म का नजारा जब देखा तो फिर वह ज्योति जैसे जीरो के बल्लभ को सत मान रखा था, साठ का चसने के बाद प्रज्वलित हो जाने के बाद वह अच्छी नहीं लगी, वहां उसके साउथ अट्रैक्शन हो जाता, ये बस की बात नहीं है। आज हमारा मुख्यमंत्री से मेल हो और एक प्रधानमंत्री का नुमाइंदा मिल जाती सा बावड़ा कोई नहीं सके, पाछे न रह जाएगा। तो जब तक हमने जहां तक ज्ञान है उतना अवश्य, परंतु जब पूर्ण लाभ का ज्ञान होगा कि सच्चे ये जो संत है ये परमात्मा हमें ये लाभ दे सकता है तो हम उसकी तरफ सवता अट्रैक्ट हो जाएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब नानक साहब के बारे में आपको वर्णन देते हैं थोड़ा सा, फिर ध्यान दीजिए। और फिर बालाजी उनके मर्दाना जी दो शिष्य थे, उनकी भी वाणी इसमें लिखी हुई है कि उनसे प्रश्न उत्तर हुए हैं कि अंगद राय जी ने पूछा था कि आप तो गुरुजियां के साथ रहते थे, कोई खास बात बताओ, फिर उन्हें बता रखी है, अभी आपको सुनाएंगे। तो नानक साहब ने महाराज कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह और वो सिखा के गड़पड़ी इब कौन छुटावेता। हमने कल भी आपको बताया था पंजाब में भी हमारे आश्रम गरीबदास जी के 100-150 आश्रम है। गरीबदास जी छुड़ानी के अंदर जैसे कल बताया था कि चौधरी बलराम जी के घर में धनखड़ गोत में गरीबदास जी ने जन्म लिया और इनको जो कबीर साहब ने दाके दर्शन दिया अपने लोक ते सतलोक से और वो नाम दिया सब लोक दिखाए वो वाणी सारा विवरण जो आख्या देखा उन्होंने इसमें लिख दिया। कबीर साहब गरीबदास जी के कम से कम भी 20-25 आश्रम हरिद्वार के अंदर है। गरीबदास जी के आश्रम पंजाब के अंदर कम से कम 150 और 140 के आसपास गरीबदास जी के नाम का आश्रम है। कुटिया है गांव गांव में और वहां पर इस वाणी का पाठ होता है। अब नानक साहब की वाणी आपने सुनी होगी ग्रंथ साहब उसके अंदर क्या है 48 घंटे चलती है वो वाणी उनके अंदर 39 संतों की वाणियां हैं प्रथम नानक साहब की फिर उनके 10 गुरुओं की सिखों की फिर कबीर साहब की सारे ग्रंथ में 40% वाणी है 60% में वो 10 गुरु जी भी आ लिए और साथ में 39 संतों की वाणी जैसे कबीर साहब नामदेव जी नाभाजी और मीराबाई और भी बहुत से संतों की है रविदास जी इन सब को मिलाकर के एक संग्रह किया गया तो इन सब का एक संग्रह करके ग्रंथ साहब बनाया गया। उस वाणी के ज्ञान से प्रतिदिन पाठ होते हैं और गरीबदास महाराज ने अकेले ने 48 घंटे की वाणी लिख रखी है बस ठीक है 48 घंटे की उसी ग्रंथ के बराबर अकेले महाराज गरीबदास जी की वाणी है जिसमें ज्योका त्यों वर्णन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता भागवत रामायण और मुसलमान धर्म ये हमें कहां तक लाभ देते हैं और फिर अपनी बताई कि भाई इस तरह काम नहीं चलता। तो इन बातों का ज्ञान नानक साहब को कबीर साहब ने दिया तो उसके बाद कबीर साहब ने ये पंथ चलाया जिसको शिष्य पंथ सिख कोई धर्म नहीं होता शिष्य पंजाबी में शिष्य को सिख कहते हैं जो सह होता है पै वाला उसको खै भी बोला जाता है जैसे पाषाण हम पढ़ते हैं तो पाखाण भी कहते हैं पाषाण तो इसी प्रकार अक्षीर कहते हैं उसको खीर भी कहते हैं खीर लिखा जाता है तो पेट पाड़ा स और रह इसको खीर कहते हैं अक्षीर भी कहते हैं शीर भी कहते हैं यानी सह जो है ये दोनों तरफ बोला जाता है तो सिख कहा जो उपदेशी होते हैं उनको शिष्य कहते हैं। अब फिर बाद में 10वें गुरुजिया ने उनकी अलग से वेशभूषा बना दी वो वेशभूषा सिख नहीं है जो शिष्य होते हैं वह सिख बड़ी तेज करते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए श्री नानक जी युगों युगों से निरंजन की भक्ति करते आ रहे थे निरंजन के बारे में आपको बताएंगे कल आज हमारा एक बोर्ड बन जाएगा जिसमें सारा वर्णन दे रखा है निरंजन कहां तक की उपलब्धि देता है क्या है वो वैसे मोटा बता दूं कि निरंजन ब्रह्म कहते हैं वेद उसको ब्रह्म कहते हैं संत उसे निरंजन कहते हैं ज्योत निरंजन प्रकाश में परमात्मा वेद उसको प्रकाश में परमात्मा कहते हैं संत उसे ज्योत निरंजन कहते हैं और ज्योत निरंजन को ही ब्रह्म कहा है और साथ में संतों ने इसको काल की उपाधि दी है क्योंकि इसमें समय प्रधान है और काल के दूसरे बयाना हम परसों बताएंगे। श्री नानक जी युगों युगों से निरंजन की भक्ति करते आ रहे थे नानक जी महान भगत थे राजा जनक विदेही भी श्री नानक जी का त्रेता युग में जन्म यानी अवतार था बहुत भक्ति की ऋषि सुखदेव जैसे महान योगी ने भी राजा जनक जी को गुरु धारण किया था परंतु जन्म मरण का चक्कर अपना यानी जनक जी का यानी नानक जी का भी नहीं खत्म हुआ कर सके। राजा अम्बरीश भी नानक जी का ही पहला जन्म का यानी त्रेता युग में सतयुग में जन्म था राजा अम्बरीश का सतयुग में जन्म था जिसमें दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश के पैर जिसमें दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश के पैर छूकर चक्र उल्टा ऋषि दुर्वासा पर चोट करने चला तो ऋषि दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए तीनों लोक में भागे, किसी ने भी सहायता नहीं की। तब भी विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी आप वापस जाकर के राजा अम्बरीश के पैर छू लो, अपनी जान बचाओ। तब मरता क्या नहीं करता, तब दुर्वासा जी ने आकर राजा अम्बरीश के पैर छुए, अम्बरीश जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर तथा दुर्वासा सुदर्शन चक्र को शांत करके दुर्वासा जी को अक्षमा की। ये सब वर्णन आप सुन चुके हो। अब थोड़ी सी वाणी कबीर सागर से आपको सुनाते हैं। कबीर सागर से सा आभार कबीर वचन, नानक साहेब की ना तप भारी, और सब विधि बहे ज्ञान अधिकारी, भक्ति भाव ताको सिखलाया, ता पर सतगुरु की नहीं दाया, दाया कहते हैं दया को। ये संत भाषा होती है, इसमें थोड़े अक्षरों का, क्योंकि पद भाग के अंदर जो है थोड़ा अंतर हो जाता है भाषा में। जिंदा रूप धरे तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। जिंदे का एक ऐसा भेष होता है, सफेद कुर्ता और एक बोथा बांध लिया, सफेद चादर और लंबा टोप, उसको जिंदा रूप में मुसलमानों में ज्यादा प्रचलित है ये जिंदा नाम के संत। जिंदा रूप धरा तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बाणी कहो पुकारा, और सुन के नानक नजर दरस निहारा। नानक साहब बैठे थे, कबीर साहब इतनी दूर बैठ के अपनी ये बात सुनान लागे कि जिस प्रकार गरीबदास जी ने कहा कि अदली आरती अदल पठाऊं, युगा युगा का लेखा ल्याऊं, जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मच कूरम ना काया, चंद सूरज नी दीप बनाया, शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध चौरासी ना तेतीसौ, नौ अवतार नहीं चौबीसों, पांच तत्व ना ही गुणतीना, नादबिंद ना ही गटसीना, चित्रगुप्त ना कृत्रम बाजी, ये धर्म राय ना पंडित का जी। भाई धूं धूं कार अनंत युग बीते, जादन कागज कहो किन चीते। फिर कबीर साहब ने पूछा कि आप कहां थे जब कुछ भी ना था। जादिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन पर लो परवाना, परले हुआ संखो युग, हम सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। कहते हैं गरीब दास जी भी कि मैं अपने परमात्मा कबीर साहब का सेवक हूं, और वही कबीर साहब सतलोक के मालिक तथा अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं भाई कुल के सर्जनहार। तो यहां कहा कि अनहद बाणी कियो पुकारा, इस बाणी ने सुनकर नानक जी ने करड़े करड़े देखे, क्योंकि कहन लाग रहा है सुनकर, अनहद बाणी कियो पुकारा, सुनकर नानक दरस निहारा, सुनकर अमर लोक की बाणी, और जान पड़ो यो परम पुरुष ज्ञानी। नानक जी ने समझा कि पूर्ण संत है, ये तो बहुत ऊंची की बात कहे से। तो नानक साहब पूछन लागे, आवो पुरुष सतगुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी ना बाणी। वो सतलोक नहीं जाना हमने कौन सा होश है, और किसी शास्त्र में ज्ञान नहीं पाया। अर्ज सुनो प्रभु जंदा स्वामी, कहो अमर लोक कहां निज धामी, कि वो लोक कहां है जिसको आप सतलोक कहते हो, सतधाम कहते हो। कहा मैं कही अमर निज वाणी, कि किसी ने काहू ना कही ये अमर निज वाणी, ये बात तुम्हारे ताई किसी ने नहीं बताई जो आप बताने लाग रहे। और धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, कोई ना पावे तुमरा भेदा, अर्जा को खोज चुके ब्रह्मा और चहु वेदा, इसको चारों वेद और ब्रह्मा जी ने भी आपका भेद नहीं पाया। अब कबीर साहब कहते हैं, जब नानक तुम बहुत तप कीन्या, और निरंकार बहुते दिन चीन्या, तुमने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, युगा युगा में की, और निरंकार ते एक पुरुष नियारा, अजर दीप ताकी तक सारा। अजर दीप अमर दीप सतलोक वो अलग स्थान है। पुरुष विछो भयो तब जब से, और काल कठिन मग रोक्यो तब से। जब से भी आप सतलोक से यहां आए थे अपनी इच्छा अनुसार, पर उसी समय आपका रास्ता इस मार्ग काल ने गलत साधनों से, गलत शास्त्रों से रोक दिया।
इत तुम सरस भक्ति ना होई क्योंकि परम पुरुष ना भेटो कोई। यहां आपकी सरस भक्ति एक रस भक्ति नहीं होती। आपने देखा होगा कि आपने बहुत सी साधन नाटक भी सुने होंगे कि विश्वामित्र जी ने तप करा, बहुत जाजूल तप कर लिया, परंतु नहीं होने दिया। एक अप्सरा को भेजा, उर्वशी को भेज कर उसका तप खंड करवा दिया। तो महाराज कहते हैं काल की व्यवस्था में प्रथम तक कोई भजन करना नहीं चाहता और चाव अभिष है तो यू काल होन नहीं देता। के आंट लाग रही थी उसके तपना भंग करण की, ठीक से अपना भजन करा था करण देते। या कोविद क्यों आई उनके मन में, ये काल प्रेरित होते हैं। इंद्र का वर्दी गुब्बारा के तेरा राज खोज लेगा, उसने ठहर श्रृंगारी अपनी उर्वशी और विश्वामित्र का खंड कर दिया। तो महाराज कहते हैं ये इत तुम सरस भक्ति ना होई क्योंकि परम पुरुष कोई ना भेटा कोई। आपको सतमार्ग दर्शक नहीं मिला, आपको रास्ता सही नहीं मिला, इस करके कोई तो तप पे लाग रहा है, कोई गीता पढ़ के मुक्ति चाहे, कोई पुराणों को पढ़ के मुक्ति चाहे, कोई वेदों के ज्ञान को कंठस्थ वेद घोट लेने को ही मुक्ति समझता है, और कोई कुरानों को और मुसलमान भाई अपने उन ओछी साधनों को ही अपनी मुक्ति का साधन समझते हैं। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने दोनों धर्मों की जो कमियां थी वो ज्यों की त्यों कही और खड़े होकर बाजार में कही और सब धर्म सब मतलब उनके मंडलों में जाकर कही, जहां पर विद्वान और उनके मौलवी और पंडित और काजी बैठे हुआ करते थे। और उस समय आज कोई कह के दिखा दो अरब कंट्री में जाके एक भी लफ्ज और इस्लाम धर्म के खिलाफ, और कबीर साहब ने सरेआम, जबकि मोहम्मद इसमें दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी राजा होया करता था, बहुत क्रूर बादशाह था, जो बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी था वो बहुत क्रूर राजा था, उसको ऐसा ठोक ठोक का जवाब दिए थे और उसने कोशिश करी थी कि कबीर साहब ने खत्म करवा दूं। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी कि तू भगवान है, अकाम मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। कबीर साहब ने कहा एक गऊ मंगा ली हजारों आदमियों के सामने रुआ काट दी, वह गाबण थी, मां और बच्चे के चार टुकड़े हुए। ने बोला अल्लाह में ये गुण होता है कि इसको जीवित कर सकता है। कबीर साहब ने बोले निरा अल्लाह का यही गुण नहीं होता कि किसी मुर्दे ने जीवित कर दे, अल्लाह के और भी बहुत गुण होते हैं। केवल एक ही सिद्धि से भी आप अल्लाह मत स्वीकार करना, पर इसने जीवित जरूर कर दूंगा। कबीर साहब ने दो चुटकी मारी थी, दो थाप उस बच्चा कर गऊ का, दोनों उसी समय जुड़ जाती है और ला कर बाछड़ा दूध ठोक दी, दूध की देग ठोक दी। बोल बंदी छोड़ महाराज की जय। ये तो 600 साल पहले का इतिहास है, कि देखो ने सोचे गपोड़ मार रखे होंगे, यार जिसका नहीं यकीन हो उसकी अपनी बुद्धि वहीं तक काम करती है। परमात्मा में ये गुण है जो वो कर सकता है। तो सिकंदर लोधी ने पांव पकड़ लिए दिल्ली के बादशाह ने, अरने बोले आप अल्लाह की जात हो, परवरदिगार हो, मुझे बख्श दो, पालकी में बिठाकर उनके घर छोड़ कर आया था। ऐसे ऐसे चमत्कार आपको आगे बहुत कुछ बताएंगे जिससे आपको प्रमाणित करके दिखावांगे कि कबीर साहब परमात्मा है। तो यहां के तब तक हमसे बिछड़े भाई और 60,000 जन्म तू पाई। नानक साहब आपके 60,000 जन्म हो लिए जब तक तू सतलोक से आया है। दर दर जन्म भक्ति भलकी न्या और फिर काल निरंजन चक्कर दीना। तने बहुत भक्ति करी, जितनी बार भी आप यहां पर आए बहुत भक्ति करके गए और फिर भी आपको जन्म मरण के चक्कर ते काल ने नहीं बचन दिया। ये व्यवस्था से इस ब्रह्मताएं की कि कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। कुछ समय स्वर्ग में बिठा दिया जाता है, स्वर्ग की परिभाषा आपको कल बताई थी। अपनी की हुई पूंजी ने शिमला खाया हुआ 10,000 रुपया ने वो खत्म होंदे उल्टा फिर आ जा, फिर आड़ा मंड जा, फिर खाया हुआ 2 महीने गर्मियां में, ये इतना सुख स्वर्ग में है। यही कबीर साहब बताते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई, रहट तले भरिया ऊपर खाली, नीचा भरिया ऊपर खाली, और यागड़ बन जा है सब कोई। 87,000 और 33,00,000 देव, यानी 88,000 से 33,00,000 देवता, और सभी बंधे निरंजन की डोरी, नो रेट की डोरी का बांध रखे, काटे जाओ चक्कर, नीचाओ भक्ति करो, ऊपर जाकर स्वर्ग में खाओ, फिर चक्कर काटो, फिर गधे बनो और कुत्ते बनो, लग 84 भी भोगो। क्योंकि गीता जी का श्रेष्ठतम ज्ञान है यहां पर कि जिसे कर्म जीव करेगा भोगे सरेगा। अब भाई बुरे भी होते हैं अच्छे भी होते हैं, बंदी छोड़ कहते हैं कि हमारी शरण में आए पाचा आपने पिछले कर्मा पर आपके यहां पर क्रॉस कर दिया जाएगा, खत्म कर देंगे। कई भाई यहां ऐतराज करते हैं कि फिर तो परमात्मा अन्यायी हो गया। अन्यायी नहीं, वो न्यायी है। अब जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आदमी मानस मार दे और उसने माफ कर दे, खूब कर दिए जाते, यहां भी कर दिए जाते। आपने उग्रवादी सुने होंगे जिन्होंने कई कई आदमी मारने का प्रमाण दिया और सरकार ने कानून तैयार कर दिया कि पिछले थरे जो कसूर से सब माफ, पर आगे मत करियो भाई। और आज प्रमाणित है, एक फूलन देवी डाकू थी उसके ऊपर भी यही कानून लागू हुआ था। तो बात यह से कहने का कि हम जितनी जानते हैं उससे आगे स्वीकार करने को हमारी बुद्धि तैयार नहीं होती। इस परमात्मा में वो शक्ति है बंदी छोड़ में कि हमारे पिछले पाप कर्मों को खत्म कर देगी। जिस प्रकार कोई नो के हो ही नहीं सकते तो उन्हें इतना जान है, ज्ञान है, और हो ही नहीं सकते फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी। जैसे पहले फसल में घास हो जाया करता, नुड़ान का रंधे इतने नुड़ा देते, फिर उसके बाद घास नहीं कटा करता। अब एक ऐसी दवाई चला दी कि उस घास ने खत्म कर देती है पर फसल को नुकसान नहीं करती। ठीक है, पहले भी दवाई पर पहले खोज नहीं पाए। इसी प्रकार ये नाम शुरू से है पर अब इसकी प्रचलित हो गया तो अब यू काम कर रहा है जैसे वह दवाई फसल में कर रही है। तुम बड़ भगत भव सागर आवा तो और जीव की कौन चलावा। कबीर साहब ने बोले, नानक जी तेरे कैसे भगत भी यहां चक्कर काटन लाग रहे, तो आम जीव थोड़ी सी भक्ति ते कहां जाएगा बेचारा। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, अब तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आया। इस निरंकार ने, इस ब्रह्म ने, निराकार शक्ति ने इस सारे जीवों को बुला रखा, अर्थ आपने इतनी अच्छी भक्ति करी फिर वापस क्यों आ गया। जब आप अमरीश रूप में गए अपने आप को न सोच के गए थे मैं मुक्त हो गया। नानक जनक विदेही के रूप में गए जब भी आप न सोच के गए थे मेरी बनगी मुक्ति। अरिब नानक जी बन का गए, अगला जन्म तेरा नानक जी सा भी ब्योत नहीं रहेगा, ये सच्ची सोच लेना। और अपनी शक्ति से वो पिछला सारी बैक रील उनको दिखाई तो नानक जी का पसीने आए। अब देखो सच्चा भगत पाछे नहीं निराह करता। अभिमान मानक मैं ज्ञानी मैं ऐसे या थोड़े दिन की चाल लगी। महाराज कहते हैं चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए गरीबदास जी कैसे। चुंडित बड़ी जटा लठा ली रखा ली और कति घोट ऊपर सारा मुंडा लिया, इसे मुंडित कहते हैं। चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए इन तय जमकिंग कर ना डरता, अर्थात इन पाखंडों से वह भक्ति नहीं बनती और भक्ति नहीं बनेगी तो यम के दूत जूता पीटेंगे, इनसे जम किंकर नहीं डरता। नानक साहब फिर कहते हैं धन पुरुष तुम यह पद भाखी, यह पद अमर गुप्त कहां राखी। कि ये तो बहुत गजब बात थी, रिया है गुप्त रहेगी थी आज तक। जब लग हम तुमको नहीं पावा अगम अपार भ्रम फैलावा, कहो गोसाई हम ते ज्ञाना परम पुरुष हम तुमको जाण्या, धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना और बिरले जन तुमको पहचाना। नानक साहब कहते हैं कोई बिरला ही आपको पहचान सके, हम तो उन तरह जी हां के तीर काट कर ठह मारा दसाने और उसने भगवान स्वीकार कर लेंगे। और इन्होंने वो काम करके दिखाए जो कृष्ण और भी फेल हो गए थे उस काम पर नहीं हुआ। जगन्नाथ का मंदिर ये प्रमाणित है, भगवान विष्णु जी के अवतार थे बुद्ध, और बौद्ध के जो अवतार गया उसने कहा था एक राजा था इंद्रदमन, सपने में उसको दर्शन दिए, वो उसका उपासक था कृष्ण जी का, कि मेरा मंदिर जगन्नाथ में बनवा दे। अब राजा ने वही आज्ञा मान के अपने इष्ट की और जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना करवा दी। पूरा मंदिर बहुत पैसे सुजित, बहुत अच्छी ढंग से सुंदर ढंग से उस पर बहुत पैसा लगाकर सुसज्जित करके उसको बनवा दिया। समंदर की लहर आई उस मंदिर को जड़ से उखाड़ के ईंट भी नहीं पाई। उसने फिर दोबारा बनवाया, चार पांच बार मंदिर बनवाया गया पर समुद्र ने यही काम किया। आखिर में राजा जो से हताश होकर बैठ जाता है। कबीर साहब जाते हैं कि राजा वो मंदिर बनवा ले, मैंने हां पर रखी है कृष्ण जी से कि मैं तेरा मंदिर बनवा दूंगा। तो राजा इंद्रदमन हाथ जोड़ ले, सैन बोला जी ना मैं तो अपना खजाना भी बर्बाद कर चुका हूं, अब समुद्र बन नहीं देता स्वामी जी, बना मैं जरूर दूं, अगर भाई समंदर को मैं नहीं आन दूंगा। पर कहां विश्वास हो, एक धोती कुर्ते आला छोटा एक आम व्यक्ति और कृष्ण जी इतनी महान शक्ति यू कैसे बनवा दे। पर ने बोला बस ये दो जोड़े हाथ आप अपना रोटी खाओ, भोजन पाओ और आराम करो। कबीर साहब ने बोले बात सुन दे भाई, मंदिर बनवावा ना तो वहां मिलूंगा काशी में, और आजिए जुलाहे के घर में मेरा जन्म से, और ऐसे ऐसे में तो बोला भाई ठीक से। रात्रि में सोपन दिया कृष्ण भगवान ने फिर कि ये जो संत आपके पास आया था ये अनंत कोट ब्रह्मंड के भगवान से, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, आप इनसे मंदिर बनवा लो। अब राजा ने फिर कोशिश करी, ढूंढे, महाराज जी मिल गए स्थान जहां बता कर गए थे। मंदिर शुरू हो गया, मंदिर तैयार हो जाता है। समुद्र जहां से चढ़ कर आता था वहां महाराज कबीर साहब ने अपना एक पत्थर सा गिरवा के वहां एक चौतरा सा बनवा लिया, उस पर बैठ जाते हैं। अब समुद्र कहते हैं बहुत ऊंची, जैसे ज्वार भाटा आपने देखा होगा सैकड़ों फुट समुद्र उठ जाता है, जब ये भूत साइक्लोन आता है ना, बहुत मतलब हजारों किलोमीटर तक उस पानी का बहाव आकर के बर्बादी कर देता है। उस समय इतना ऊंचा उठा कबीर साहब ने अपनी शक्ति से ऐसे कर दिया, वो ज्यों का त्यों रुक गया, जैसे जाम हो जाता है। अब समंदर भी ऊपर का रूप बना करके बाहर आवे और हाथ जोड़ दे से, न्यो कहे परम पुरुष, हे परमात्मा आप कौन शक्ति हो, मुझे आगे जाने दो। की करेगा भाई कि इस मंदिर ने ढाऊंगा। अरे भले पुरुष, मंदिर आश्रम बनवाया करें, ढाया करें, इतना नीच काम करे तो। अगजी इस कृष्ण ने मेरी मर्यादा भंग कर रखी समुद्र की। क्यों कर भाई कि जब ये राम रूप में आए थे इन्होंने जबरदस्ती तीर के बल पर मेरे पर रास्ता मांगा था, और वो बदला मैं लूंगा जी। अकीस यू तो ढा नहीं सकता, चल ढा ले तो। अब कहां बसावा थी कि तभी तो मैं आपके पास आया हूं, मेरी नहीं बसांती तो मुझे बदला दिवाओ महाराज कि उसकी द्वारकापुरी ने डबोले। आज भी प्रमाण है द्वारका समुद्र ने डबो रखी है, और वहां जगन्नाथ के मंदिर से समुद्र नहीं ढाता, उसको बचा रखा है। अब फिर के हुआ कि अगले दिन भाई हफ्ते 10 दिन के बाद उसमें पूजा शुरू होनी थी, मोटे मोटे पांडे मेरे केसे जो गणे बोला करें वो जाके अट्ठे पहुंचे सारा पूजा का सामान लेकर के, और कबीर साहब आगे खड़े मंदिर के गेट में, और उसकी पकड़ का बा एक पांडे ने जो हेड मुखिया पांडा था, और दूर मारा बगा के मनहूस नीच जाति के, और तू आगे आ गया सुबह सुबह, हम तो ठाकुर की पूजा करनी थी, भगवान की पूजा करनी थी, आज नहीं करते फेर करेंगे। अंदर जाते हैं तो जितनी भी मूर्ति उसमें लगी हुई थी सारी कबीर साहब का रूप धारण कर लिए। अब वो पांडे हो गए एकदम भैया बनी की कहानी, तो कुछ देर के बाद वो वही मूर्ति बन जाती है। फिर वो धोते हैं खूब अच्छी तरह पानी ग्योर ग्योर का मसल मसल का, उसने अशुद्ध हो गया, पूजा शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद उस पांडे का कोड लाग गया जिसने महाराज जी को धक्का दिया था, कोड लाग गया, इतना इलाज करवा लिया, तड़प है, रात की नींद खत्म होगी, दिन में किलकी मारे, सारे दवाई करा ली, कोई आराम नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए कि उसी संत के पांव होकर पीले पांडे जब तेरी जान बचे, उसी पांडे ने मरता के नहीं करता जाकर कबीर साहब के सैकड़ों आदमियों पांव होकर गट देसी पी लिए। देखते देखते जानो कोड था नहीं उसका, उसी समय समाप्त हुआ जब सैकड़ों आदमियों का विश्वास हुआ। कबीर साहब ने बोले एक बात कान खोल कर सुन दे पांडो, आगे से इस मंदिर में जय छुआ छात किसी ने कर दी उसका यही हर्ष होगा जो इस पांडे का हुआ। आज प्रमाण है जब से जगन्नाथ का मंदिर बना उसमें किसी धर्म का व्यक्ति जा सकता है, और आज से 100 वर्ष पहले 50 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले दूसरी जाति वाले को आम मंदिर में बढ़ने नहीं दिया जाता था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी अपने हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी उन्होंने भी एक मंदिर में जाने की कोशिश की थी, उस समय उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया गया था कि आप हिंदू जाति से यानी पंडित जाति से नहीं रही, ये पेपरों में काफी दिन आई थी। तो इस प्रकार उस मंदिर में और उस दिन से आज तक कोई छुआछात नहीं है, और वहां कबीर साहब की मूर्ति बनी हुई है। एक बार फिर प्रमाण मिला कि जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडा खिचड़ी बनावा था, खिचड़ी ऐसे पकती है उसमें नीचे ऊपर रख दी जाती है मटके टोकने पीतल के एक उस पर ऐसे, सबसे पहले ऊपरली तैयार होती है, 5-6 ऐसे रख दी, नीचे आग बाली जाती है, सबसे पहले ऊपरली तैयार होती है और ऊपरली उतारी जाती है। एक दिन कबीर साहब सिकंदर लोधी के उसमें बैठे हुए थे, उसके राज मतलब सिंहासन में मतलब उसके दरबार में, सिकंदर लोधी के दरबार में कबीर साहब रविदास जी दोनों बैठे हुए, और भी जैसे वहां होते हैं, वजीर हुए, सिपाही हुए, उनके रिश्तेदार काफी बैठे थे। एकदम कबीर साहब खड़े होकर के अपने पांव पे अपना पानी डालते हैं, लोटे मत। तो सब कहने लगे, महाराज क्या हो गया, क्या लग गया पैर के? अकने कुछ नहीं लगा, जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडे का पांव जड़ा था, खिचड़ी पड़ गई उसके ऊपर, तो मटका उतर के पड़के और उसने बुझाऊ सुना बेचारा मर जाता जड़ के, इतनी तेज आंच थी उसकी। अब शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, वो एकदम हंसा, अब देखो जी मूर्ख की बात कैसे, पानी गिरा पांप है और बुध पांडे का पांप, इसका पता करवाओ। उसी समय दो घुड़ ऊंट सवार भेजे, कबीर साहब ने नाम बता दिया कि इस नाम का पांडा और ये समय और ये तिथि। वो समय तिथि समय सारा नोट करके वो चाल पड़े। वहां जानते वो पांडा पूछा, कौन है मैं सुबाई कि तेरे पांप है कोई खिचड़ी पड़ गई थी यानी मटका फूट के पड़ा था? कहा किसने बचा? कबीर साहब ने। कौन कबीर? कि काशी में रहने वाले बंदी छोड़ कबीर, कि वो यहां कैसे आए? वो तो रोज आते हैं एक बार दर्शन यहां पर, सब काशी के सभी ने पूछ लो, एक बार सबको दर्शन देगा जहां से आवे किसी बार रूप में। और वो कहां थे? कि यहां खड़े थे मेरे साथ में और पानी ले रहे थे, जैसे बर्फ का होया करे शीतल हेम पानी जल, और उसमें घेर दिया तो मेरा पांव बुझा। पूरी पता लिख के वो ऊंट सवारों ने, दूतों ने और दस्तक करवा लिए, 20 आदमियों के और गुठे लवाए, साथ में पांडे का नाम लिखा और वह बात ज्यों की त्यों। ये बंदी छोड़ कबीर साहब की महिमा आप सुनोगे जब आपको ज्ञान होगा। तो अब नानक साहब के बारे में चल रही है, बहे दयाल परस्पर गुरु ज्ञानी और कहो गहो पान परवाना पानी भली बही तुम हमको पावा। जब ये काशी में पहुंच गए, ऊपर की सारी झलक देख जा के तो काशी में पहुंच जाते हैं, जब का वर्णन है कि बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, फिर बंदी छोड़ प्रसन्न हो गए नानक साहब पे कि चोखा तने यह बात पहचान ली, मेरे को पहचान लिया। बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी और गहो पान परवाना पानी की वाणी के तुम मेरा ये नाम लो, भली बही तुम हमको पावा और ये सकलो पंथ काल को ध्यावा। ये जितने भी पंथ साधना है ये सब काल की उपासना कर रहे हैं, काल निरंजन समय के अनुसार जहां पर नष्ट होते हैं उसको काल का राज कहते हैं, और एक ऐसा स्थान है जहां पर काल समय कुछ नहीं है। तुम इनते अब बहे नियारा, भाई फेर जन्म ना हो है तुम्हारा, अब तुम इस काल से अलग होगे, इब दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। ये कबीर साहब नानक साहब को कह रहे हैं। बली सुरत तुम हमको चिन्हा और अमर मंत्र ले हम तुमको दीना, इब ये अमर मंत्र दे दिया मैंने आपको, इस नाम का जाप करा करी। ससम वेद कही हम कही निज वाणी और परम पुरुष गत तुम बखानी। अब चार वेद आपने सुने होंगे, यजुर्वेद, यजुर श्याम अथर्वण और ऋग्वेद, और पांचवा वेद ससम वेद है, सर्वसम वेद जो संतों के पास है। उस वेद का जब पांचवें का ज्ञान होता है तब हमें इन चारों वेदों से ऊपर की जानकारी होती है। ऐसा कहा कि सर्वसम वेद कही निज बाणी और परम पुरुष गति बहुत बखानी। नानक वचन, धन पुरुष ज्ञानी करतारा जीव काज प्रगटे संसारा, धन करता तुम बंदी छोड़ा ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि तुम्हारे ज्ञान में बहुत शक्ति है, यथार्थता है और आपका ज्ञान सबसे उचित है। दिया नाम गुरु किया उबारा और नानक अमर लोक पग धारा। अब यहां नानक साहब अपनी वाणी कहते हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है, जाका सकल जहू, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, शिव वर्मा जा सोरा है, शिव वर्मा जा सोरा है, वाह वाह कबीर गुरपुरा, वाह वाह कबीर गुरपुरा है। श्वेत ध्वजा फरक गुरुआ की, श्वेत ध्वजा फरक गुरुआ की, बाजे अनहद तूरा है, बाजे अनहद तूरा, वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह कबीर। पूरण कबीर सकल घट व्यापे, पूरण कबीर सकल घट व्यापे, हरदम हाल हजूरा है भाई, हरदम हाल हजूरा है, वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह पूरा है। नाम कबीर जप बड़ भागी, नाम कबीर जप बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है, नानक चरण का धूरा, वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह कबीर।
इस प्रकार अब हम प्रमाणित आपको कबीर नाम की महिमा वेदा अनुसार बतावें। यजुर्वेद में कबीर साहब की महिमा गाई गई है, जिसका भाष्य भाषा स्वामी दयानंद जी ने किया है। प्रथम भाग यजुर्वेद के, इसको ध्यान से लेना था, ये पढ़ा जावे इतना नजदीक लेंस कर लेना। यजुर्वेद के पांचवें अध्याय का 32वें श्लोक में आप देखोगे स्वामी जी के द्वारा भाषा भाष्य है, ये उनका सरलार्थ किया हुआ और भावार्थ। अब ये ध्यान से देखें, स्वामी जियों का सत्यार्थ प्रकाश भी हम आपको बताएंगे दिखाएंगे, इसमें बुराई मत समझना, जो की त्यों बतावांगे जो इसमें लिख रखा। ये अभी आपने यजुर्वेद में और श्याम वेद के अंदर कबीर शब्द की महिमा का ज्ञान हुआ। ये सामने जैसा कि पहले गोरखनाथ और कबीर साहब की गोष्ठी हुई थी, गोरखनाथ जी त्रिशूल के ऊपर बैठे हुए हैं और कबीर साहब बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं अपनी इस धागे के साथ। जब गोरखनाथ जी ने अपनी हार स्वीकार की तथा यथार्थ ज्ञान को समझा सुना और आत्म कल्याण करवाया, दूसरे रूप में पहले उसे एक मछली के रूप में वार्ता हुई थी कबीर साहब तथा गोरखनाथ जियों की। गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि अजमानी चाही थी कबीर साहब के साथ, के ये नहीं जानते होंगे, कबीर साहब से कहने लगे कि मैं एक सिद्धि अपनी दिखाऊंगा, आप मुझे पहचानना। जल के अंदर मछली बन गए थे, मछली का रूप धारण कर लिया, कहने लगे मुझे ढूंढ लेना। कबीर साहब ने उनकी पकड़ कर मुंडी बाहर काट दिया, जैसे भी आपने मछली रूप देखी। और फिर कबीर साहब को गोरखनाथ जी कहने लगे मैं आपको ढूंढूंगा, आप भी अपनी सिद्धि दिखाइए। कबीर साहब कहते थे कि सिद्धि की आड़ अनजान व्यक्ति लिया करें, बाकी आप मुझे ढूंढ नहीं सकते, चार वेद नहीं ढूंढ सकते, आप तो क्या ढूंढोगे। महाराज पानी में पानी मिल जाते हैं, कहते यह भी एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि ऐसी होती है जो पांचों तत् नीर हो जाते हैं, पानी बन जाता है। यह बहुत बिरले साधु को उपलब्ध होती है, बहुत ही बिरले को। तो इस प्रकार कबीर साहब ने गोरखनाथ जी को समझाया। अभी आपने नानक साहब के बारे में जानकारी हुई थी कि उन्होंने कबीर के नाम कबीर जप बड़ भागी, नानक चरण का अधूरा है। तो कबीर नाम की महिमा आपने वेद में देखी, यजुर्वेद में पांचवें अध्याय के 32वें श्लोक का जो का तो अब टीवी के ऊपर आपके सामने आया था, इसमें आप पढ़िएगा देखिएगा कि कभी स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि वो परमात्मा जिससे सारी सृष्टि चेतन है। अभी मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं, यजुर्वेद
जो कि आपने देखा, इसमें अब पढ़ के भी सुनाता हूं। 32वें श्लोक, 5वें श्लोक का 32वां श्लोक, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। हम इसमें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जो की तो बताते हैं, यही हमारे कबीर साहब गरीबदास जी ने किया कि जो की तो बात उन्होंने बताई, कोई अपनी तरफ से नहीं मिलाई। अब यह संस्कृत तो हमने आंदी नहीं, पढ़ आगे तो गलत सलत पढ़ी। हम इनका सरलार्थ कर रखा स्वामी जी ने, वो बता दें कि हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं, खोटे चनन वाले जीवों के शत्रु वा क्रांत परजय हैं, बंधन से बंधन के शत्रु, यानी बंध छुड़ाने बंधन के शत्रु कहो, बंधन न काटनिया, हम बंदी छोड़ के, ताप बंधन के शत्रु वा तारा आदि तंतुओं के विस्तार करने वाले, यानी सब इनके आप रचयिता हो, तारे पूरे सब लोगों के।